ओम शांति। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो आप जैसी बाबा की आत्माओं के बीच में, मुझे पता नहीं मैंने कितनी चर्निंग की है वो आप लोग डिसाइड करेंगे, मौका मिला। जैसे कल मुझे टॉपिक दिया गया कि बाबा सर्व दिव्य गुणों का दाता है, दिव्य बुद्धि का दाता है। सचमुच बाबा दिव्य बुद्धि का दाता है। दिव्य बुद्धि वो है जिससे सबका कल्याण हो। गुण तो बुद्धि तो सभी में है, आत्मा में अच्छे बुरे भी हैं गुण और अवगुण भी हैं। तो अवगुण को तो सभी जानते हैं, उनको छोड़ दें, गुण और दिव्य गुण अगर देखें तो गुण जो होता है वो सिर्फ किसी एक स्थान के लिए, एक जगह के लिए, सीमित अवध सीमित परिधि में गुण होता है। लेकिन जो दिव्य गुण होता है वो सभी के कल्याण के लिए होता है। जैसे सूरज है, उसकी रोशनी है, वो सभी को रोशनी देती है, तो वो दिव्य गुण हुआ। जैसे ये लाइट है, लाइट की जो रोशनी है वो सिर्फ सीमित है इसी कमरे तक के लिए। जैसे हमारे पूर्वज रहे वो दिव्य गुणों के दाता रहे, इसीलिए उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। मानो जैसे जैसे हम लोग नीचे गिरते हैं तो गुणों में हम सीमित हो जाते हैं। आजकल के युग में लोग अधिक अपनी मतलब गंदी आदतों को ही अपना गुण ले लेते हैं, लेकिन असली गुण वो है जो गुण हमें सबके कल्याण के लिए हो। बाबा ने इसीलिए हमारे अपनी आत्मा को, जैसे बाबा सब गुणों का सागर है, दिव्य गुणों का सागर है, ऐसे उसने हमें 7 गुण दिए। वही 7 गुण अगर हम धारण करके और सभी के कल्याण के लिए हम काम करते हैं तो वही हमारी एक मजबूती बनती है और आत्मा सभी के कल्याण के लिए काम करती है। जैसे हमारे सीनियर्स हैं, दादियां, जगदीश भाई, रमेश भाई, इन्होंने ये सब चीज धारण करके तभी आज विश्व में उनका स्थान है, उनको याद किया जाता है। किसी समय अरस्तु से किसी व्यक्ति ने पूछा कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य की परिभाषा क्या है, तो अरस्तु ने उससे कहा आजीवन। तो उसने पूछा संतान उत्पत्ति के लिए क्या किया जाए, तो उसने कहा एक बार। फिर अरस्तु से उसने पूछा कि अगर इच्छा दमन ना हो तो उसने कहा सर के पास कफन रख के चलना। तो इस तरह से हमारे जो पुराने, जो हमारे पूर्वज रहे या जो भी हमारे फिलोसफर रहे, साइंटिस्ट रहे, उन्होंने भी दिव्य गुणों का को धारण किया, इसीलिए वो फेमस हुए। वैसे तो जो हमारे 7 गुण हैं उनसे भी बहुत सारे अलग अलग 7 गुण और निकलते हैं। तो ये जो दिव्य गुण हैं ये तभी हम धारण कर सकते हैं जबकि हम उस परमात्मा से जुड़े रहें। बहुत सारे ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हुई हैं जो एक गुण की वजह से बहुत उनका नाम हुआ है, देश में उनको सभी जानते हैं। जैसे हमारी ट्रेसा, मदर ट्रेसा, उन्होंने मदर का एक गुण धारण किया और वो मदर ट्रेसा बन गई, ट्रेसा से मदर ट्रेसा बन गई और नोबेल पुरस्कार मिला उनको। ऐसे ही बहुत सारे हमारे धर्मगुरु हुए, वो भी एक एक गुण के लिए, उनके वो कोई दिव्य गुण नहीं थे, एक ही गुण था, सारे गुण नहीं थे उनमें, उसी को दिव्य गुण करके उन्होंने अपने धर्मों को आगे चलाया। लेकिन हमें तो बाबा ने 7 आत्मा के गुण दिए हैं और उनमें भी 7 हैं, तो 7 × 7 = 49। तो जिसके पास 49 हो हैं वो दूसरे धर्मात्माओं से, इसीलिए हम लोग पूज्य हैं। जैसे अभी हम लोग जब कभी निकलते हैं मंदिर के आगे से तो क्यों हमारा सर नीचे झुकता है, सूर्य को हम सुबह प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें दिव्यता है, दिव्यता के कारण ही हम उनको करते हैं। तो इसी प्रकार जैसे दिव्य गुण हम धारण करते जाते हैं तो हमें दिव्यता आती जाती है और हम सबके कल्याण के लिए सोचते हैं। अभी पीछे एक दिल्ली का वाक्य सुनाता हूं। दादी जानकी गई हुई थी और वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि प्रोग्राम होना 21 जून को पॉसिबल नहीं हो रहा था, लाल किले पे जो हो रहा। तो दादी अपने रूम में थी, क्योंकि वहां मैं ओआरसी में आना जाना मेरा अक्सर होता है, नोएडा से हूं, 20 साल से ज्ञान में हूं, तो दादी से पर्सनल मुलाकात वगैरह में बुलाते हैं। तो दादी अपने रूम में रेस्ट के लिए गई थी, तो रेस्ट उनकी जो ब्राह्मणी है उन्होंने पूछा, दादी आप सो रही हो क्या? तो कहती मैं सोऊंगी क्या, हैं मैं क्या सोऊंगी, मैं सोने के लिए आई हूं। उन्होंने कहा मैं प्रकृति को जो है प्रकृति को साकार दे रही हूं, प्रकृति को साकार दे रही हूं। और आप लोग मानेंगे नहीं कि 21 तारीख को सुबह इतना अच्छा वातावरण था, इतना ठंडा वातावरण था कि हम लोग उससे मतलब दादी से एक चीज सीखने को मिली कि साकाश में है दिव्य गुण। उन्होंने किसी एक के लिए नहीं किया, उन्हें प्रकृति को अपने कब्जे में किया। तो दिव्य गुण से हम अपनी प्रकृति को भी अपने कंट्रोल में अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऐसे ही कई और महात्मा हुए हैं, जैसे एक हमारे जैसे जीवन हमारा जो स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है हमारे सात गुण हमारे पास होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में करके अपने को एक मृत्यु की तरह, जीवन हमारा शुरू होता है जहां से वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें अपने दिव्य गुणों को हमेशा ध्यान रख के हमें सर्व के कल्याण के लिए जो हो सकता है उसको हमें करना चाहिए। ऐसे ही जैसे शास्त्रों में भी और भिन्न भिन्न ग्रंथों में भी स्वर की कल्पना की गई है, तो स्वर की कल्पना सिर्फ गुणों के लिए नहीं की गई, प्रकृति के लिए की। ऐसे मानव जो है, जैसे प्रकृति जो है प्रकृति मानव से है और मानव दिव्यता का श्रृंगार है, अगर दिव्य गुण नहीं हो तो मानव का श्रृंगार नहीं है। एक संत से, संत की बड़ी महिमा थी जो भी मैं बता रहा था कि एक संत की बहुत महिमा थी, तो राजा को पता चली कि उसकी बहुत महिमा है, तो राजा उसके पास गया। राजा ने कहा, उससे पूछा कि हे संत, तो जैसे उसकी हे संत की आवाज आई तो संत समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि अगर प्रजा होती है तो ए संत बोलती है, हे संत नहीं बोलती। तो उसने उससे पूछा कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है? तो संत ने जवाब दिया कि समय नहीं। तो जैसे ही संत ने बोला समय नहीं, तो राजा को गुस्सा आ गया और उसने तलवार निकाल ली। तलवार निकाल के जैसे उसके गर्दन के पास रखी, उस संत ने आंखें खोली, कह दी यही नरक है, यही नरक है। और जब उसने नरक बोला तो उसने तलवार रख दी और पैरों तले गिर गया। तो कहते हैं जब उदारता आ गई तो वही हमारी स्वर्ग बन गया। तो थोड़ा सा मैंने चरणिंग की है, तो ज्यादा तो अगर थोड़ा टाइम मिलता तो शायद थोड़ा डिटेल में भी और जा सकता था। तो हमारे जो अपने गुण हैं और उन्हीं से संबंधित, जैसे अंतर्मुखता है, धैर्यता है, शालीनता है, हर्षित मुक्ता, नम्रता, गंभीरता और पवित्रता, इस तरह के जो हमारे आठ नौ गुण हैं उनका वर्णन किया गया है। और हम लोग अपने गुणों से गुणों को दिव्य गुणों में परिवर्तित कर रहे हैं, और यही हमारा प्रयास जब तक बाबा का साथ है। बाबा क्या करता है, हमारा एक एक बच्चा जो है राजा बच्चा है, विश्व कल्याणकारी है, तो विश्व कल्याणकारी के लिए हमें दिव्य गुण ही धारण करने पड़ेंगे। एक गुण तो हम अपने परिवार के लिए ही सिर्फ सीमित रह सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, एक शादी होके बहू घर में आती है, तो जैसे अपने समाज में प्रथा है कि वो घर के वालों के लिए खाना बनाती है, तो पहले दिन उसने जब अपना भोजन बनाया, सब लोग खाने के लिए बैठे, तो बहू को खाना बनाना नहीं आता था ज्यादा, तो देखा उसमें नमक नहीं है, तो उन्होंने कहा ये क्या खाना बनाया है, ये क्या खाना बनाया है? तो सासू जी ने उनकी कहा कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि इसमें नमक नहीं है, ऐसे कोई खाना बनाया जाता है? तो सास ने कहा सबको कि ये बहू की गलती नहीं है, मुझे डॉक्टर ने नमक खाने के लिए मना किया था, इसलिए शायद उसने कम डाल दिया होगा। मैं अभी ले आती हूं। और उसने सबको नमक दिया, किसी के दिमाग में कोई भी किसी प्रकार के निगेटिविटी नहीं चली। तो अगर हम इन्हीं सब गुणों को धारण कर लें, तो जो परिवारों में कलेश है, दिव्य गुण का मतलब ये नहीं है कि उसका क्या नाम, हम सिर्फ अपने, वो जो सबके कल्याण के लिए है वही दिव्य गुण है, बाकी गुण है। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा शीर्षक था बाबा डायरेक्टर है। श्री बाबा हमारा डायरेक्टर है, जो भी निर्देशन करते हैं वह हमारे लिए ही करते हैं। इसलिए बाबा ने निर्देशन दिया, बच्चे देह में रहते हुए भी देह से अलग रहने के लिए बाबा ने सिखाया, क्योंकि हम 63 जन्म तो देह में ही रहते हैं। इसलिए बाबा ने अब सिखाया कि देह से अलग रहने के लिए डायरेक्शन दिया, ताकि हम देह से अलग रहकर बाबा जैसे प्योर हैं वैसे ही प्योर बन सकते हैं। इसलिए जैसे एक उदाहरण देती हूँ, जैसे चावल होता है ना, वह मिट्टी में ही फलता है, मिट्टी से उसको निकाल के सफाई करके धुलाई करके उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने के टाइम में भी वो मुख में चला आया तो उसको बाहर निकाल के भी उसको स्वीकार करते हैं, मिट्टी को स्वीकार कर नहीं सकते। उसी तरह से बाबा ने भी हमको सिखाया कि हम 63 जन्म देह में रहते हैं, और अब संगम युग में आके बाबा ने देह से अलग रहकर प्योर आत्मिक स्मृति में रहने के लिए बाबा ने सिखाया, क्योंकि हम प्योर होके ही अपने घर जाएंगे और अपने राज्य में आ सकेंगे। यदि प्योर नहीं बनेंगे तो आ भी नहीं सकेंगे। इसलिए अपने बच्चे को, ब्राह्मण बच्चे को चुन चुन कर बाबा ने देवता बनाने के लिए दिव्य गुण दे रहे हैं, जिसमें ये डिवाइन गुण होगा वही जाकर देवता बन सकेगा। यह भी बाबा ने डायरेक्शन दिया है, ताकि हम आत्माएं में दिव्य गुण है तो हम देवता कहलाएंगे, यदि हम आत्माएं में दिव्य गुण नहीं है तो वह देवता नहीं है। जैसे देवताओं को स्वरूप देखते हैं, उसको चेहरा देखते हैं, उसको संस्कार चाल चलन कितने अच्छे होते हैं, तो बाबा ने भी उतना अच्छे बनाने के लिए बोलने की कला भी सिखाई, चलने की कला, सब कला बाबा ने डायरेक्शन मुरली द्वारा रोज सिखलाते हैं कि बच्चे ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। जैसे गाड़ी में हम चढ़ते हैं ना, जैसे गाड़ी वहां तक पहुंचाएगा, और बस में चढ़ जाते हैं कि वहां तक हमें जाना है, कोई निर्भय नहीं रहता है, भय नहीं रहता है। इसलिए बाबा ने इसी तरह से सिखाया कि हमें भी उस दुनिया में जाना है, बच्चे खुश होके चलना चाहिए। इसी तरह से बाबा ने रोज ज्ञान से श्रृंगार कराया, दिव्य गुण से भराया, सभी को देवता बनाने के लिए ये बाबा ने बहुत डायरेक्शन दिया है। ओम शांति। मेरा नाम है लौकिक पार्वती, मैं नेपाल से हूँ, नेपाल के जनकपुर से। मेरे साथ दीदी भी आई है। अचानक बाबा ने यह टाइम मिला दिया आने के लिए, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे आएंगे। 5 साल से सेंटर में हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोली थी मैं। आज पहली बार बोलने के लिए मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भाई जी को क्लास रोज सुनती हूँ, वहाँ पे रोज चलता है, सब लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। मैं पहली बार माइक पे बोल रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे एक गाइड सेवा मिली है, पिछली बार भी मैंने गाइड सेवा करी थी, बाबा ने मेरे को इस लाइक समझा। और मैं इंदौर से हूँ और सेंटर देवास, वो बेसिकली मैं महाराष्ट्र का हूँ, और इस शरीर का नाम है गोपाल। वैसे फार्मा इंडस्ट्रीज में मेरा कर्म है, वहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। जैसा आज का टॉपिक मिला मेरे को, बाबा मेरा कैलकुलेटर, पिछली बार मैंने सब भाइयों के क्लास सुने, बहुत अच्छा अच्छा बताया था। बाबा मेरा सीवियर, बाबा मेरा किंग मेकर, बाबा मेरा योगाचार्य, इस विषय पे भाइयों ने बहुत अच्छे क्लास दिया, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी कुछ क्लास करूं, कुछ बोलूं, बाकी तो गाइड सेवा में भी देता हूं जैसा आदि मध्य अंत जैसा सृष्टि चक्र का मैं बताता रहता हूं, उसमें भी बहुत सारे सवाल करते रहते लोग, उनसे भी अपन को कुछ सीखने को मिलता है और उनको भी कुछ अपन दे सकते हैं। बाबा तो बोलते हैं ना, बाबा तो ज्ञान का सागर है, मतलब जितना सागर को मंथन करते हैं ना अपन, उतना रत्न निकलते हैं। जितना ज्यादा डीप में अपन जाएंगे तो उतने ज्यादा रत्न अपन को मिलेंगे और अपना जो है प्लस होते जाएगा। कैलकुलेटर में बाबा दबाएगा प्लस, आपने रत्न लिया प्लस। और बाबा ने बोला है जैसा आशीष सुशील भाई के क्लास में मैंने कल देखा था, बस सुना था, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताए थे कल, जैसे दिव्य गुण का भी है, बाबा ने बोला है दिव्य गुण का जो चाबी जो है बाबा ने मतलब लॉक बच्चों को दिया है ना, थोड़ा मतलब पॉइंट देख के भी मैं बता सकता, दुख चलेगा ना मैंने जैसे जितना सागर में जाएंगे उतना तो बता दिया मैंने। और बाबा किसी भी रिश्ता किसी संबंध को अगर बाबा को याद करते हैं, जैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, जैसा सचिन भाई जी ने भी कल बताया था डस्टर के ऊपर भी अपन बोले कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल के लिए कुछ बोल सकते हैं उसके ऊपर भी, इमेजिन करके जैसा क्या मिटाना क्या ये करना है ना। जैसा सबसे पहले बाबा क्या देखता है, कैलकुलेटर सबसे पहले बाबा का शुरू होता है सुबह अमृत वेला पे। अमृत वेला आप उठ गए, अमृत वेला बाबा को गुड मॉर्निंग किया हा? और बैठे बैठे बेडरूम पे मतलब बेड पे सो गए, मतलब बैठे बैठे सो गए, बाबा ने बोला है हम तो उठ गए गुड मॉर्निंग किया, बाबा ने भी गुड मॉर्निंग किया, पर बाबा वहां पे रुकेंगे अपने पास, बोलेंगे कि बच्चा तो आग बंद कर दिए, बच्चे ने बैठे बैठे क्या करे, आग खोलेगा तो मैं किरने दू आग खोले तो मैं किरने दू, तो बाबा देखता है चलो बच्चा सोया है, वो फिर डाइवर्ट होके दूसरी जगह वो किरने दे देते बाबा, वो दूसरे बच्चे को जो जगता रहता है आंखें खुली रहती है उनको ज्यादा दे देता है। तो आपने कितना मतलब लिया, कितने किरने, उसमें अमृत वेला सबसे मतलब पॉइंट अपन को अमृत वेले में सबसे ज्यादा मिलते हैं। अमृत वेला आप डेली उठ रहे मतलब कितने देर तक आप बैठे याद में कॉन्सेंट्रेशन से, कितनी देर तक एकाग्र किया अमृत वेले पे, सभी पॉइंट उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मतलब पॉइंट मिलते हैं। कैलकुलेशन उसके ऊपर पूरा दिन का पोता मेल उसके ऊपर होता है। इसके ऊपर मैं एक कहानी बताऊं क्या, थोड़ी सी एक कहानी है, जैसा एक सेठ था उसकी ज्वेलरी की शॉप थी और उनके एक मुनीम थे। मुनीम पहले जो है ना कैलकुलेटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, ऐसे लाल लाल कैप लगाते थे और मतलब लेखा जोखा बड़ी ऐसी लाल लाल किताब होती थी उसमें हाथ से कैलकुलेशन करके ऐसा करते थे। और सेठ जी और मुनीम में बहुत अंडरस्टैंडिंग था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत था, मतलब जैसा भी कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस, जैसे दुकान मतलब शॉप बंद करने के पहले वो पोता मेल लिखते थे, जैसे अपन लिखते हैं ना रात को 10 बजे, फिर भी बाबा बोलते हैं कि मतलब पोता मेल भी झूठ लिखते हैं, वो बात अलग है तो वो पोता मेल लिखते थे, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा हुआ उनको। दिन गुजरते गए मतलब समय निकलता गया, फिर सेठ का अचानक देहांत हो गया, शरीर छोड़ दिया उसने सेठ ने। फिर सेठ जी का लड़का था एक सेठ जी का एक लड़का था, वो बहुत जैसा बाप कमाई बोलते हैं ना, बाप कमाई पे ऊपर ज्यादा मतलब फोकस उसका, कोई एकदम नशा उसको कि बाप का है अपन कुछ, और पढ़ा लिखा कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता था, बिल्कुल अंगूठा छाप रह गया वो। और जो मुनीम जी थे वो भी कुछ कालांतर से उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया, तो मुनीम का लड़का आया फिर उनकी जगह। और ये सेठ जी के लड़के को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि ये अपन को जो है आगे इसको बढ़ाना है मतलब, पर सेठ जी का लड़का अंगूठा छाप, और मुनीम का जो लड़का था वो बहुत तेज बहुत चतुर, तो मुनीम मतलब कैलकुलेशन करता था, वो भी हा में हा मिलाता था, तो उसको क्या उसके फादर ही उधर थे, उसको लगा कि तो बराबर करेगी इनका लड़का है, तो उनको कुछ इसकी जानकारी नहीं थी। उनके फादर ने भी कभी उसको सिखाया नहीं कि मतलब कैसा का वर्क करते हैं, कैसा क्या, उसको जानकारी नहीं थी। तो कुछ समय बाद जो है वो जो मुनीम का लड़का जो है जो चतुर था, उसने ऐसे कैसे कैलकुलेशन करे कि सारा धंधा चौपट हो गया। और बगल में जो है ना उसने उसका शॉप खोल लिया और ये सेठ रास्ते पे आ गया। इससे क्या सीख मिलती है कि मतलब अपने पास ज्ञान, अज्ञान था, अज्ञानी था ना, अज्ञानी था, कुछ ज्ञान नहीं था, तो उसको नुकसान हो गया। और उस समय बाबा का नॉलेज भी, बाबा भी नहीं था उसके साथ, ना तो उसकी पढ़ाई, कुछ भी नहीं था, तो रास्ते पे आ गया। ये उससे सीख मिली। वैसे अमृत वेले पे अगर अपन स्ट्रांग अगर ये करते हैं, स्ट्रांग योग अपना अगर रहा और स्ट्रांग अगर पूरा सकाश दिया अपन सकाश दिया सबको, बाबा वो भी देखता है आपने कितने किरने लिया और कितना सकाश आपने स्प्रेड किया धरती पे, मतलब लोगों पे कितना शांति के दान आपने दिया, वो सब देखते रहता। और सेकंड जो आता है पॉइंट वो मुरली का, मुरली आपने पढ़ी मतलब उसका कितना मंथन किया मुरली का, और कितना उससे प्राप्तियां ली, और कितना दिन भर उस नशे में रहा कि मुरली का मंथन करके किस नशे में रहा। अगर मुरली भूल गया कुछ टाइम बाद तो वो पॉइंट भी जो है माइनस हो जाते हैं। माया दुकान खोल देती है, माया तो आती रहती, बिल्कुल वो देखती रहती है कि ये बच्चा जरा सा भी इधर उधर हो गया कि वो कहीं ना कहीं तो घुस ही जाती है, आ ही जाती है तुरंत, है ना। और दूसरे तो मुरली और संकल्प, मनसा वाचा कर्मना, मनसा वाचा कर्मना में आपने कितना दिन भर ध्यान दिया और किसके साथ मतलब कितना ये किया और किसको कितना ज्ञान दिया बाबा का, हाँ उसके ऊपर भी मतलब डिपेंड करता है प्लस माइनस पॉइंट। और बाबा के साथ कितना रहा, जैसा अपन कोई जाते हैं तो अपन ये समझते कि अपन में बहुत ये आ गया है, अपन देवता बन गए हैं, वो डायरेक्ट उनको बताने लग जाते हैं। कभी भी कहीं भी जाते हैं ना अपन, तो बाबा को साथ में लेकर अगर जाते हैं अपन, बाबा को साथ में ले जाना चाहिए, तो अलग ही अपन उनको बता सकते हैं, अलग ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स उनको और बता सकते हैं। अगर अपने मन से अगर करे तो बाबा भी बोलता है ये तो बच्चा सेल्फिश हो गया, ये तो अपन को साथ ले ही नहीं जाता है, हाँ अपने पैरों में एकदम से खड़ा हो गया। तो ये सब चीजें। और जैसा क्रोध, क्रोध जैसा, क्रोध के भी बहुत सारे परिभाषाएं होती है, जैसा हाइपर क्रोध, मिडल और नॉर्मल। जैसा नॉर्मल क्रोध, अपन जैसे घर पे पत्नी के साथ क्रोध किया, पत्नी के साथ क्रोध किया, उसका मतलब अपने दिल में कुछ नहीं, अपन क्रोध किया और बच्चों को भी क्रोध किया अपन ने, तो पत्नी भी क्रोध किया ना अपन ने, तो इफेक्ट क्या, उसके भी मन स्थिति खराब और खाना नहीं मिलेगा। नहीं मतलब ये अनुभव सुना रहा हूं मैं। नहीं पहले नहीं, लौकिक में थे तब, हाँ लौकिक में थे तब ऐसा होता था, झगड़ा हो जाता था पत्नी से, क्रोध किया, पत्नी की मन स्थिति खराब, फिर क्या, फिर गए अपन काम से, खाना नहीं मिलता था, फिर बच्चे, बच्चे को तो क्रोध किया, बच्चे तो बस बच्चे ही है, वो उनको ज्यादा मतलब ये नहीं रहता था, पर अपनी दिनचर्या भी खत्म, काम में भी मन नहीं लगता अपन, क्या क्रोध किया अपन ने, और पता चले शाम को आके भी मुंह फूला सा। पर जैसे लौकिक अलौकिक मतलब जन्म लिया, तब कितना भी जैसे क्रोध करते हैं तो सामने वाला भी समझ जाता है कि नहीं ये क्रोध मतलब इतना ये नहीं है, हाइपर नहीं, नॉर्मल क्रोध है, एक घंटे बाद शांत हो जाएगा, सब शांत, अभी तो तुरंत क्रोध शांत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। लौकिक में मतलब युगल है मेरी, वो भी गीता पाठशाला चलाती है और मेडिटेशन कल क्लासेस सुनाते, दोनों ज्ञान में हम लोग और बच्चे भी। तो वो जो है ना जैसा क्रोध किया, भले 10 मिनट के लिए किया, 5 मिनट के लिए किया, पर वो तो खाते में जमा तो हो गया ना, माइनस पॉइंट हो गया, बाबा तो कर ही देगा माइनस। आपने अमृत वेला किया 100 पॉइंट, फिर किसी को कितना ज्ञान दिया और किस हिसाब से दिया, अगर बाबा को लेके नहीं दिया तो वो पॉइंट भी मतलब माइनस ही होगा, अगर बाबा को लेके अगर दिया, बाबा को याद करके दिया तो प्लस होते जाएगा, है ना। तो इस प्रकार जो है, और क्या, जैसे अपन कहीं जाते हैं, जैसे ट्रेन में सफर में कोई जाते हैं अपन, कोई अपन को बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, तो एकदम से अपन हाइपर हो जाते हैं, तो वो तो इस प्रकार का है। फिर शाम को अपन रात को फिर लिखते हैं कि बाबा हमने ये किया, दिन भर ये किया, और हमने मनसा सेवा की, कर्मना से काम किया और इतने इतने लोगों को ज्ञान दिया। बाबा फिर डायरेक्ट है ना, कैलकुलेशन नहीं करता, बाबा ने पहले कैलकुलेशन करा हुआ रहता है, वो डायरेक्ट इज इक्वल टू के बटन दबा देता है, तो फिर बराबर बता देता है आपने ये किया, है ना। बस ओम शांति।